कल से चैतन्य से संबंध में राय रामानंद संवाद को हम लोग आरंभ कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ बतलाया किंतु पहला जो श्लोक है इसके संबंध में जो आरंभ का श्लोक है मैं भूल गया और फिर से हम लोग श्लोक की टीकाओं में हम लोग कुछ विचार करेंगे। वो श्लोक है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बतला रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा है, लिखे तो और से लोगों ने कविता पूर्व में लिखा है, लोचन दास जी ठाकुर जी ने लिखा है, वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, इन्होंने लिखा है और भी लोगों ने लिखा है। तो इन्होंने सबका चरित चरण करके और उसको इन्होंने ग्रहण किया। अवशेष वैष्णव भगवान के प्रसाद को महाप्रसाद कहा और महाप्रसाद के जो भगवान का चरित चरण है वो मां मां महाप्रसाद है। यदि भक्त लोग इसको ग्रहण करते तो भगवान का लीला चरित्र वृंदावन दास ठाकुर लोचन दास और सब लोगों ने किए हैं, किंतु उनका उत्कृष्ट ग्रहण करके और बचे हुए भाग को जो दिख रहे हैं इसलिए और ही अमृत हुआ, क्योंकि ये महाप्रसाद के रूप में सबके चरणों की उन्होंने वंदना की। बाकी उन लोगों ने भी चैतन्य चैतामृत लिखा था, उन लोगों के नाम बदल दिए गए और इसका नाम चैतन्य चैतामृत रूप हुआ। जीव गोस्वामी के ग्रंथों का, रूप गोस्वामी के ग्रंथों का सबकी पर्यालोचना करने के बाद में ये चैतन्य चैतामृत ग्रंथ ये लिखा था। तो इसमें यह सिद्धांतिक, दार्शनिक और रसिक ये दोनों ग्रंथ चैतन्य चैतामृत। इसको समझने के लिए भक्ति रसाम सिंह उज्ज्वल मणि नाटक चंद्रिका और सब जितने ग्रंथ हैं, समस्त श्रीमद् भागवत है, वेद है, पुराण है, परिषद है, ये सबको जो पढ़ रखा होगा ये इसको समझ। यद्यपि बंगला में है किंतु उतना भाव गंभीर है कि इसके संस्कृत में टीका भी, और वो टीका दूसरों में नहीं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने खूब की है। इतनी सुंदर इसकी और गंभीर भावना है। तो इस श्लोक से ही आप लोग उसकी कल्पना करेंगे, साधारण सा श्लोक होने पर भी बड़ा गंभीर इसका भाव। जैसे श्लोक भागवत का एक श्लोक, वदन्ति तत्त्वं जगज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति अद्वय ज्ञान ब्रजेन्द्रनन्द। अद्वय ज्ञान माने क्या? वही अद्वय, उसी का ये बतला रहे अद्वय। बड़ा गंभीर श्लोक है, कितने कितने पृष्ठों में उसकी सब आचार्यों ने टीकाकार उसकी टीका की। अद्वय ज्ञान ये शब्द ही बड़ा गंभीर है, किसी भी दूसरे शास्त्र में नहीं मिले। तो इसमें कह रहे हैं ये सिद्धांत ग्रंथ भी है, रस ग्रंथ भी है। कृष्ण लीला अमृत है और महाप्रभु जी की लीला उसमें मिला दिया तो उसमें और भरपूर मिला दिया, तो वो रस में सुगंध और उसमें और भी माधुर्य बढ़ गया। संचार्य रामा विद भक्त मेघे मेघे तो भक्ति सिद्धांत चयामृतान गौराभ्य रे तई रमुना विस्तीर्ण विज्ञप्त रत्नालयतां प्रयास। संचार्य रामा विथ भक्त मेघे, संचार्य चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश में जाए, गोतावरी के तट पर गए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं रस समुद्र हैं, रस के समुद्र हैं। रस माने क्या? भक्ति रस, उसके स्वयं ये समुद्र। अरे इधर में जगह है तो उधर में क्यों पीछे इतना बैठे और अब चले तो चैतन्य महाप्रभु रस के समुद्र। अब इसको उपमा के द्वारा समझिए तब ये समझने जल्दी आए। समुद्र होता है ये पानी का, जल का आधार बृहद आधार और मूल आधार, जितना पानी है सब समुद्र में किसी की किसी न किसी रूप में। जो कुछ पानी इस पृथ्वी पर है, भूतल पर है, वो किसी न किसी रूप में समुद्र का ही पानी है। पानी और है ही नहीं है, जहां भी कुछ पानी है वही से कैसे उससे पानी से मेघ संचरित होता है, तो समुद्र से मेघ होता है और मेघ चारों तरफ विस्तीर्ण होकर के वर्षा करता है।
और वो पानी सर्वत्र, और फिर वही पानी किसी न किसी रूप में शंभू में आता है, और फिर मेघ होता है, फिर चारों तरफ वर्षा होती है, फिर नदियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से किसी न किसी रूप में जल आएगा, वो शंभू में आएगा। जैसे मान लिया कि हमारे शरीर से पसीना आया और वो पसीना जो आया वो गया कहां कहां, किसी न किसी रूप में वो सूख गया मालूम होता है हमें। तो वो कैसे सूखा, सूर्य के ताप से या कैसे हवा के से के द्वारा, और उसके कारण उसमें मिलकर के और वो मेघ में मिले, फिर वर्षा हुई। यहाँ पर एक बूंद हम पानी गिराएंगे तो ऊपर से नीचे नाली में, नाली में से वहां, वहां से वहां, फिर नालों के माध्यम से जमुना, जमुना से गंगा, गंगा से भी कहीं न कहीं किसी रूप में यहाँ पर भी पानी सूख गया तो उसका वेपर कहाँ गया आकाश में, किसी न किसी प्रकार से फिर वो समुद्र में पहुंचेगा, जलाधार जहां से निकलता है। तो समस्त जितने भी रस हैं, विचार हैं, सिद्धांत हैं, सबके मूल उद्गम स्थल कृष्ण है, ये कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है। तो ये जैसे समुद्र से वाष्प बना और मेघ बना, आकाश में गया। अच्छा, ये मेघ कैसे बना, वाष्प हुआ कैसे, सूर्य की किरणों से, बिना सूर्य के किरणों की सहायता से वाष्प नहीं होता। अब समुद्र भी है और ये सूर्य भी है, चैतन्य महाप्रभु अपने आप अलक्षित रूप में मेघ बने। मेघ कौन हुआ, भक्त उधर में मेघ हुआ ना, और वहां से वर्षा हुई, फिर वो पानी समुद्र में गया। और एक प्रोसेस है, यदि यही पानी वर्षा का मेघ रोहिणी नक्षत्र में या स्वाति नक्षत्र में पड़े, स्वाति नक्षत्र में, रोहिणी स्वाति नक्षत्र में, और वो समुद्र में गिरे डायरेक्ट, तो उसमें सीप घोंघे और शंख के मुख खुले होते हैं, वो पानी उनमें जाकर के पड़ता है, और पानी पड़ने से वो सीप में मुख बन जाता है। अब वो इसी का पानी ऊपर गया, फिर आकाश से फिर लौट करके आया, स्वाति नक्षत्र में आया, और समुद्र के रहने वाले सीपों में वो पड़ा, फिर वो मोती बन गया बेस्टी की, तब समुद्र को कहते हैं रत्नाकर। पहले रत्नाकर नहीं, किंतु उसी का पानी स्वाति नक्षत्र में जाकर के ऊपर से फिर आकर के उसमें बस गया और वो सीपों में गया, तो हो गया मोती बेस्टी की, और तब उसको रत्नालय समुद्र को कहते हैं, रत्न का आलय। अच्छा, ये जो सीप है समुद्र में, उसमें उसकी पोटेंसी है रत्नों की, न पानी में है, समुद्र के सीपों में उसकी पोटेंसी है। क्यों, वही पानी स्वाति नक्षत्र का यदि सर्पों के ऊपर में पड़े तो वो हो जाता है मणि, हाथी के सिर पर यदि पड़े तो गजमुक्ता हो जाता है, केले में पड़े तो कपूर हो जाता है, गाय के खुर पर पड़े तो वो गोरोचना हो जाता है, मृग के ऊपर में किसी प्रकार से पड़े तो वो मृगनाभी हो जाती है, बांस में वंश लोचन हो जाता है। एक ही पानी एक ही समय में गिरा, अलग अलग वस्तुओं को गिरा, अलग अलग वो चीजें बेस्किन की सभी चीजें, तो उन सब चीजों में पोटेंसी है, सहायता भी उसी जल की, और ये सीप घोघे भी ये पानी से ही बने, समुद्र के पानी से ही, और अलग से इनकी स्थिति नहीं है, इसलिए यहाँ पक्का रहे। अब इसी उदाहरण को समझो, चैतन्य महाप्रभु रस के सिद्धांत के, रस सिद्धांत, यह रस कैसे बनता है, भक्ति में पांच माने गए, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधु। ये जो है ये सब मिलाकर के एक रस समझो, चैतन्य महाप्रभु इन सब के समस्त रसों को अच्छी तरह से जानने वाले, वो रसस्व रसो वैश्य। रामानंद इत्यादि भक्त हैं, भगवान कृपा करके अपने भक्तों में भक्ति रस का संचार करते हैं। ये संचार तीन प्रकार या चार प्रकार से होता है, एक होता है उपदेश देकर, एक होता है हात्र, हात्र में भीतरी भीतर हृदय में उस भक्त का संचार करते हैं, भक्ति रस का संचार। एक होता है दृष्टि से, दृष्टि से शक्ति का संचार करते हैं। ये हात्र बाकी ये तीन कह दिया जाओ, तुमको ये काम हो, तुमको हृदय में भक्ति का रास्ता कर से। और एक होता है चैत्य गुरु के रूप में हृदय में उस चीज को उत्पन्न कर, जैसे वीर मंगल इत्यादि का ऊपर से दिखाई पड़ता है, कोई साधन भजन वाले से हो गया, ये चैत्य गुरु के रूप में हृदय में अपने दया का संचार करके उसमें ये भक्ति रस को संचरित कर। और एक दृष्टि के द्वारा देखा और उसके ऊपर में कृपा हो गई, सब कुछ उसके हृदय में। रामानंद के हृदय में हाथ रहे, भक्तों के ऊपर में हृदय से ही इच्छा की और भक्तों में अपनी भक्ति का संचार कर दिया, संचार करके उनके द्वारा फिर उन उपदेशों को सुना और सुन करके किया, उसी को कहें संचार्य रामाविद भक्त मेघे, भक्त रूपी मेघ अर्थात रामानंद में अपनी प्रेम रस को संचरित किया। स्वभक्ति सिद्धांत चयामृता, क्या अपने भक्ति के सिद्धांतों को स्फूर्ति की और फिर उन्हीं के द्वारा सुन करके गौगाभ्यरे तई अमुना बीते, उनके मुख से फिर अपने आप सुना और सुन करके तत्ज्ञत्वा उसको जाने और जान करके और फिर रत्नालयता भक्ति रत्नालयता भक्ति के सिद्धांतों के रत्न रूपी आलय हुए चैतन्य महाप्रभु। मैं उस चैतन्य महाप्रभु की बनता हूं। यहां पर एक विचार लोग साधारण रूप में समझते हैं कि महाप्रभु दक्षिण देश में जाकर के रामानंद से प्रश्न पूछा, उन्होंने उत्तर दिया और महाप्रभु इसके बाद में सब तत्वों को जाना, यह साधारण बात की तुकल। रामानंद महाप्रभु से अधिक नहीं जाना, रामानंद कौन थे कल मैंने बताया था, विशाखा जी के स्वरूप है। उसमें और भी बातें हैं, एक अर्जुनी या गोपी और कुछ ललिता जी का भी अंश करते हैं, ये तीन मिलकर के अर्जुन, अर्जुनी या गोपी विशाखा और ललिता का कुछ समय ये सब मिल करके कहते हैं कि ये रहा है। अर्जुन कृष्ण के सखा हैं। कृष्ण लीला में महाभारत इत्यादि में कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और भागवत गीता इत्यादि श्रवण किए और कृष्ण के सखा के रूप में सब कुछ उन्होंने किया। कृष्ण ने उनके सखा बनकर के सब कार्य किंतु इससे उनकी तृप्ति नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई। इसलिए उनकी इच्छा हुई यदि मैं वृंदावन में मेरा जन्म होता और मैं गोपी बनता और गोपियों की कुछ सेवा कर पाता तो हमारा जीवन होता। गोपी भाव से कृष्ण की सेवा ये किसी प्रकार से सुना उन्होंने कृष्ण की लीलाओं। कहां से सुना? अपनी मैया से। उनकी मैया कहां ने सुना? कुंती जी। कुंती जी कृष्ण का के साथ में उनका संपर्क था भरत की लीलाओं को और उन्होंने सब कुछ श्रवण किया था और उनका इसके प्रति लोभ था, इसलिए अर्जुन को भी लोभ हुआ और उन्होंने पूर्णिमा जी की कृपा से अर्जुनी गोपी बने थे और उनकी कुछ सेवा करने की लालसा हुई। फिर इसके बाद उन्होंने ब्रज में कोई राष्ट्र इत्यादि में सम्मिलित हुए कि नहीं ये कहीं कुछ नहीं, बस वहां तक लिखा। तो वो अर्जुनी गोपी भी थे, अर्जुन का कुछ विभाग और विशाखा जी को थी। विशाखा जी भी कम जानने वाली नहीं है। तो कृष्णचंद्र मूल हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, समस्त रसों के विषय हैं। रस के ये समुद्र हैं, किंतु एक चीज उनमें कमी है कृष्ण। तो वो गए गोदावरी में, उसके पहले जब आविर्भूत हुए थे उस समय तीन वांछाओं की पूर्ति के लिए वो अवतीर्ण हुए। राधाया प्रणय महिमा कीर्तिशा, अनया माने पहला राधाया प्रणय महिमा कीर्तिशो, राधा जी की कृष्ण के प्रति कैसा प्रणय है, कृष्ण का राधा जी के प्रति प्रणय है वो कृष्ण को उपलब्धि है, किंतु राधा जी का जो प्रेम है वो प्रणय स्थिति में पहुंच करके कृष्ण के प्रति कैसा उनको उन्मादित कर देता है, किसको? राधा जी को। कृष्ण उतने उन्मादित नहीं होते हैं जितने कि राधा जी को उन्माद हो जाता है। क्यों हो जाता है? मेरे रूप में कैसा माधुर्य है, मेरे गुणों में, मेरी क्रियाओं में कैसा माधुर्य है, राधा जी एकदम उन्मादग्रस्त हो जाती है और उस समय उनको कैसा लगता है, कौन सा सुख आनंद उनको प्राप्त होता है, इन तीनों चीजों को जानने के लिए उनकी लालसा। राधा जी का भाव लिया और अंगों की कांति लेकर के अवतीर्ण हुए, किंतु जानते तो हैं किंतु अनुभूति नहीं है। अनुभूति के पहले जो कुछ होता है उसको कहते हैं ज्ञान और जब उसकी अनुभूति होती है इसको कहते हैं विज्ञान। कृष्ण शांत रस के विषय हैं, दास रस के विषय हैं, सख रस के विषय हैं, वात्सल्य रस के और मधुर रस के विषय हैं। आश्रय नहीं है, भक्त लोग इसके अपने अपने रसों से आश्रय होते हैं। विशेष करके राधा जी माधुर्य रस की आश्रय है। कृष्ण इस चीज को आस्वादन करना चाहते हैं। ज्ञान तो है किंतु विज्ञान नहीं है। समुद्र है उसमें रत्न नहीं है, ये रत्न कैसे मिलेगा? यदि राधा जी खुद अथवा उनकी विशेष सखियां यदि इसको अनुभव करा सकें तो ये संभव हो सकता है, उसमें विशेष शिक्षा की जरूरत है। इसलिए ये यहां पर गए गोदावरी के तट में राय रामानंद सिंह। राय रामानंद जी से प्रश्न कर रहे हैं, ये बतला रहे हैं, उनको ज्ञान तो है किंतु अभी विज्ञान नहीं है कृष्ण को, क्योंकि वो विषय है आश्रय नहीं। इसलिए विशाखा जी से उन्होंने सुना, विशाखा जी ने उस विषय की दीक्षा उनको दी और उन सब विषयों को अच्छी तरह से बतलाया, कैसे अनुभूति के साथ में बतलाया, एक एक उदाहरण देकर के शास्त्रों से और साथ साथ में अनुभूति कराते हुए कृष्ण को ऐसी सब चीजों को बताया। इसके बाद में चैतन्य महापुरुष को जान करके उस रस में डूब गए और वहां से लड़ करके गंभीरा में इन्हीं के साथ में और सब दामोदर के साथ में उसी का रस पहुंचा। इसीलिए कहते हैं तज ज्ञात्वा, उसको जान करके, ऐसी कोई चीज है जो नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं, किंतु अनुभूति नहीं है। अब इसके बाद में कृष्ण को अनुभूति हुई, जैसे कहीं कृष्ण की बंसी लीला में भी ऐसा सुना जाता है, कृष्ण की बंसी ले लिया और कहती है कृष्ण से हमको बंसी बजाना सिखला दे, और उनको बंसी बजाने का अभ्यास। यहां तक कि कृष्ण ने कहा कि आप इतने छोटे शरीर में इतना बड़ा मान कैसे रख रखती हैं, तो हमको थोड़ा सा मान करना सिखला देंगे? अरे ठीक, तो तू हमारे कपड़े पहन ले और मैं आपका कपड़ा पहन ले। उनको कपड़ा पहना करके उनको बना दिया गोपी और अपने बन गई गोप, और उनको सिखलाने लगी कि ऐसा करना, मैं यहां आऊं तो तुम बोलना मत, मुंह इधर करके बैठ जाना, मैं जितना भी मनाऊ तुम मानना मत। अच्छा देखो मैं अब जा रही हूं, अब आऊंगी मनाने के लिए, किंतु सर ही तुम मत मानना। तो बस चली गई और उस थोड़ी देर के बाद में वो आई तो कृष्ण बने हुए जो गोपी थे वो मुख गिरा लिया और ये मना रहे हैं वो मंत्री नहीं, सचमुच में ऐसा हो गया कृष्ण को जो सचमुच में ही अंत तक नहीं। तब राधा जी ने देखा था ये मानते तो कहा अरे मैंने तो तुमको सिखलाया मान करना और हमसे ही तुम मान कर रही। इस तरह से सिखला मैंने है, जानते तो है कि तुम फिर भी ऐसा। अब इसके द्वारा विज्ञान अर्थात तो उसके द्वारा ये लोग सीखते हैं, तो उसी तरह से चैतन्य महापुरुष स्वयं रस के स्वरूप में है, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब रसों को भी जानते हैं, किंतु होने पर भी वो प्रेम के विषय हैं, इसलिए भक्तों के आश्रय को नहीं सुनते, इसलिए कभी कभी स्वयं भक्त हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण स्वयं भक्त होकर के भक्त भाव होने से सख्त का भी भाव, उसका भी आश्रय का भाव, समस्त भक्ति के रसों के आश्रय होकर के सीख करके और उसको आश्रय केवल राधा भाव ही नहीं भक्ति सखीता। अब दोनों मिले हैं हम लोग विचार, समुद्र के किनारे बैठे थे, राय रामानंद जी आए गाजे बजाते हुए हजारों ब्राह्मणों के साथ में, ब्राह्मण लोग सोच रहे ये शूद्र कहे और इतने गंभीर और विद्वान और ये बाल संन्यासी सूर्य के समान ब्राह्मण बालक और उस पर भी बहुत उच्च कोटि का संन्यासी, और इसको आलिंगन करके और दोनों रो रहे हैं, दोनों लोट पोट रहे हैं जमीन में, ये क्यों नहीं समझ सके उनके दिमाग में नहीं। यही बात की थी रामलीला में भी, रामचंद्र जी सबरी के यहाँ मिले गए, सब ऋषि लोग रामचंद्र जी के यहाँ जा रहे हैं, और रामचंद्र जी खुद कहाँ गए, सबरी गए, वहां जाकर उसकी जूठी बेर खाई। सब ऋषि लोग वहां पर उपस्थित हुए, उन्होंने कहा प्रभो यहाँ एक तालाब है पंपा सरोवर, पानी इसका बहुत पहले निर्मल था, जब से ये बूढ़ी आई है और हम लोगों ने आश्रम छोड़ा इसी के मारे, गुरु जी के पास में आने लगी, हम लोगों ने मना किया कि ये तू इसको यहाँ पर मत बुलाइए, तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, उसको कहा कि उसी को हम हरि कथा सुनाएंगे, तुम लोगों की सुनने की इच्छा तो सुनो, नहीं तो तुम लोग आश्रम से चले जाओ। तो हम लोग इसी के मारे चले गए और तब से इस सरोवर का पानी गंदा हो गया, इसमें कीड़े पड़ गए और पानी पीने के लायक नहीं रहा। आप कृपा करके इसका पानी सुंदर स्वच्छ निर्मल कर दीजिए, नहीं तो पानी कहीं नहीं मिलता है। तो प्रभु जी थोड़ा सा हंसने का आशय ये था कि बुढ़िया के कारण उसका पानी गंदा नहीं हुआ, बल्कि तुम लोगों के पापों से ये गंदा हुआ, तुमने उसमें ऐसी भावना की, शुद्र की भावना, जो भगवान का भजन करता है वो कदापि शुद्र और शुद्राणी नहीं हो सकता। तुम्हारे गुरु जी का विचार ठीक था, तुम लोगों ने गुरु का निरादर किया और अपमान किया, अवहेला की, इसलिए तुम उस स्वर में गए, तुम्हारे स्पर्श से स्वर का पानी गंदा हो गया, ये बुढ़िया की वजह से नहीं। यदि तब उन्होंने ऊपर से ये बतलाया कि बुढ़िया के चरण को धो करके जब वह पानी यदि सरोवर में डाल दिया जाए तो पानी नहीं बदलता है, सचमुच में उनको तो पहले ऐसा भान नहीं था, किंतु फिर भी उसके पैर को धो करके रामचंद्र जी के पानी से और सरोवर में डालते ही पानी एकदम स्वच्छ है। भक्तों में नीच जाति इत्यादि की भावना कदापि नहीं रखनी चाहिए। स्मार्ट ब्राह्मण लोग, स्मार्ट जो ऋषि होते हैं वो लोग किंतु ऐसा ही जाति पाति का विचार उन भक्तों में भी रखते हैं, भगवान में भी रखते हैं। शायद वो लोग रामचंद्र जी का जूठा भी नहीं खा सकते थे, क्यों कि रामचंद्र जी क्षत्रिय थे और कृष्ण ग्वाला थे, बहुत से ब्राह्मण लोग कृष्ण को भोग भी नहीं लगाते क्योंकि वो जाति के ग्वाला थे, ब्राह्मण होते तो लगा लेते, इसलिए शालक राम की पूजा करेंगे, कृष्ण राधा जी की पूजा नहीं करेंगे। बहुत से उत्तम ऐसे भी ब्राह्मण होते हैं, पढ़े लिखे विद्वान लोग, जो किसी को गुरु नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते, अरे हम ब्राह्मण हैं सबके गुरु और मैं किसको गुरु बना, तो मैं नीचा हो जाऊंगा, इसलिए जीवन के अंत तक गुरु नहीं बनाते और अंत में नीचे चले जाते, केवल कुल का और वर्ण का अभिमान रखना यही ये भी स्मार्ट है, इसलिए इसको छोड़ करके अपना आत्म मंगल करना चाहिए। सभी जितने जीव हैं सभी भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख, इसलिए भक्तों में कभी भी जाति बुद्धि इत्यादि नहीं रखना चाहिए। ब्राह्मण स्मार्ट थे, खड़े थे, उन लोगों ने देखा अरे कहां ये सन्यासी उत्तम का वैष्णव ब्राह्मण और कहां ये शूद्र और ये राजा गंभीर, और दोनों मिलकर के यहाँ लोट पोट रहे हैं और रो रहे हैं, आंखों से आंसुओं की धारा गिर रही हो, उनके समझ में कुछ नहीं आया, उनका शूद्र और ब्राह्मण और सन्यासी बस यही तरह सोच करके जब कुछ नहीं मिला कि उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, महाप्रभु जी ने कहा आज देर हो जाएगी, अब भी काम ले जाइए और हम भी अपना संध्या आंधी दोपहर का कर करके विश्राम करें। इतने में एक ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मण ने कहा महाप्रभु जी को आज निमंत्रण आपका हमारे घर पर है। महाप्रभु जी ने इसे स्वीकार कर लिया। महाप्रभु ब्राह्मण में भी जो भक्त रहता था उसी के घर में जाया करते थे या उसके घर का देने से वो कुछ नहीं करते, विषयी लोगों का जो विश्व में अत्यंत आसक्त हैं, ऐसे लोगों का कभी भी कोई अन्न ग्रहण नहीं करते थे। बहुत सावधानी से रहते, हमारे रूप सनातन भी ऐसे ही रहते, विषय लोगों का अन्न हम नहीं ले सकते। विषय लोगों का अन्न लेने से चित्त मलिन हो जाता है और मलिन चित्त होने से भगवान का भजन नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार किए चले गए। महाप्रभु कह रहे हैं सुस्त है या दुह से स्थाने के बसी जाए तब यहां से महाप्रभु बनते रहे। महाप्रभु जी ने कहा सार्वम भट्टाचार्य परिदा कुमार जी ने तुम्हारे निमित्त मोरे परिदा कर सार्वम भट्टाचार्य ने हमको जब मैं पुरी से चला तो हमको बताया आपके गुरु परम भगवत भक्त हैं और रसिक भक्त हैं। मैं रामानंद को पहले नहीं समझ सका किंतु जब से आपकी कृपा हुई तब से अब मैं उनको समझ रहा हूँ। आज विश्व में उनके समान परम भक्त रसिक भक्त और ब्रज के भावों को लेने वाले भक्त विरले हैं उनके समान में, इसलिए आप जाए तो उनसे जरूर मिले मेरे कहने से। तो महाप्रभु जी कहते हैं उनकी बातों को सुन करके मैं यहाँ पर आया हूँ आपसे मिलने के लिए। तुम्हारे मेरे बारे में भाव भैया अनया से पाई दर्शन, अनायास ही आपका दर्शन मिल गया। मैं दृष्टि को चार बात भगवान की कृपा से संतों का मिलना बड़ा दुर्लभ है किंतु पूर्व जन्म का संसारों का अनायासी साधुओं का संग हो जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं होता। साधारण लोगों के लिए वह संग बड़ा कठिन होता है। राय कहे सार्वभौम करे राय। रामानंद जी ने कहा कि महाप्रभु जी हमको सार्वभौम जी हमको अपना सेवक जानते हैं और परोक्ष हीते सब है, वो नहीं है यहाँ तो भी चाहते हैं कि इसका कल्याण हो, इसलिए परोक्ष रूप में आप ही के पास हमको भेजा। मैं आपसे मिलने में और आपकी कृपा को प्राप्त करने में उन्हीं को कारण समझ रहा है, उन्हीं के कारण से यह ऐसा हुआ है। तार कृपा कायम तुम्हारे दर्शन आज सफल है जो मोर मनुष्य, आज मेरा सफल जीवन हो गया। आप जैसे व्यक्ति को सार्वभौम कुमार कृपा तार ए चिन्ह अस्पृश्य अस्पृश्य ले भैया भैया प्रेम अप्रेम के अभिमुख के अस्पृश्य मैं शूद्र इत्यादि जो छूने लायक हैं तो भी आपने कृपा करके हमको स्पर्श किया और आलिंगन दान दिया, ये आपकी कृपा। शूद्र किस लिए करें हैं शूद्र नहीं राजकाज में रहने के कारण अपने को शूद्र समझने में जीत हूँ किंतु यथार्थ नहीं। ऐसा क्यों होता प्रेम का स्वरूप ये प्रेम का संबंध जिसको प्रेम होता है वो अपने को दीन ही नहीं समझता। चिना गति सुन चेना करो रवि सच सुनना हमारी ना मान देना फिर प्रेम न सका। ये भक्ति का स्वरूप लक्षण है, जिसको भक्ति होगा वो जरूर अपने को दीनहीन समझेगा नीच समझेगा। ये भक्ति का ही स्वरूप है। क्यों अपने स्वरूप की उपलब्धि होती है जब स्वरूप एक छोटा सा पार्टिकल भगवान वो लोग समझते हैं और साधुओं के संग के लिए सब समय लालायित होते हैं इसलिए दीनहीन होते हैं। बिना दीनता के भक्ति नहीं मिल सकती, न वैष्णव का संग हो सकता, उससे लाभ नहीं उठाया जा सकता। जब दीन होंगे तभी ये उठाया जा सकता है। कहां तुम्हें साक्षात ईश्वर नारायण, कहां आप नारायण साक्षात हैं और कहां कोई राज से वो विषय सूत्र कैसे ये जान लिया कि ये साक्षात नारायण है। दो विषय, एक तो सन्यासी को सभी लोग नारायण के समान समझते नारायण नमो नारायण इत्यादि। दूसरी बात आकृति और प्रकृति से पीछे बतलाएंगे, आकृति और प्रकृति से, आकृति माने रूप और प्रकृति माने स्वभाव। महाप्रभु जी का आगे बतलाएंगे प्रकांड शरीर कमल लोचन प्रकांड शरीर, प्रकांड माने मनुष्य अपने साढ़े तीन हाथ का होता है अपना शरीर होता है साढ़े तीन हाथ, असाधारण बौना रहे, छोटा रहे, बड़ा रहे, अपने हाथों से तीन हाथ का साढ़े तीन हाथ का माँ प्रभु जी या भगवान के जितने अवतार होते हैं सभी चार हाथों और उनका हाथ कहाँ तक जाएगा? अजाम लंबित यहाँ तक सबका जाएगा, हम लोगों का यहाँ तक रहेगा, किंतु भगवान की भुजाएं बड़ी लंबी होती है, वो अपने घुटने तक वो चली जाए, अजाम लंबित नग्रो और अंगों की हर्षवता और दीर्घता शास्त्र के अनुसार में होती है महापुरुषों के, कौन कौन से अंग उनके छोटे होंगे, कौन कौन से विस्तीर्ण होंगे, जैसे हस्तक्षर विस्तीर्ण है, ललाट विस्तीर्ण, कमर पतली होगी, नासा उन्नत होगी, आंखें कमल के समान बड़ी बड़ी होंगी, ये सब उसके लक्षण है बहुत से, मात्र में उन लक्षणों को शास्त्र तो ये जानते हैं, उसने मार किया ये लंबी लंबी पूजाएं हैं, शरीर भी चार हाथ का है, अत्यंत सुंदर है, सुगठित है, और प्रकृति माने क्या, बड़े दयालु, इतने दयालु हम जैसे व्यक्ति को जो छूना नहीं चाहिए उसको छू लिया, और इनके देखने से ही ब्राह्मणों को प्रेम उत्पन्न हो गया, उनके भी आंखों में आंसू आ गए, ये साधारण लोगों को नहीं होता है, ये भगवान का विशेष गुण है, जहां देखे ले ऐसे कृष्ण प्रेम, ऐसे दयालु हैं कि पशु पक्षी कीट पतंग भी महाप्रभु को या कृष्ण को देख करके उनको प्रेम, यहां तक कि लता होती है लताएं, कृष्ण के छोड़कर के और कौन सा अवतार ऐसा है जिन्होंने लताओं को पताओं को भी प्रेम किया, बस एकमात्र कृष्ण का ही अवतार है, इसके बाद में ये चैतन्य महाप्रभु जी वही करते हैं, लताओं को भी प्रेम हो जाता है, जिधर जिधर से रास्ते से जाते हैं गए हैं, आज भी वहां पर हम लोग जाते हैं जब तो देखते हैं अपूर्व भाव, बंगाल में वह पथ जिस पथ से वो समुद्र को गए थे और जहाँ से लौटे थे, हम लोग 24 परगना इत्यादि स्थानों में, मेदिनीपुर में पिछलता इत्यादि स्थानों में जाते हैं, देखते हैं वहां पर आज भी स्त्री पुरुष सभी बड़े भक्त होते हैं, हम लोग के मठ में अधिकांश जितने लड़के थे या आए हैं उधर ही के सब रहने, उधर जब जाते हैं गुरु जी जाते थे उनके साथ में हम लोग जाते थे, 10-20-25 सन्यासी ब्रह्मचारी सब लाल लाल कपड़े सब चलते थे उनके साथ, गुरु जी ऐसे ही प्रचार में जाते, तो इन स्थानों में हम लोग जाते थे तो गुरु जी की अगवानी करने के लिए 40-50 मृदंग और शंख, स्त्रियां चारों तरफ में शंख बजा रही हैं और घड़ियाल और घंटा बजने लगे और हरि ध्वनि सब करने लगे, इस तरह से आंखों से आंसू आ जाते थे, ये सब सुनकर एक साथ में 50 मृदंग बजे ना और उसका पिछला भाग मालूम होता कि मेघ गर्जन कर रहा है, अपने आप वह नाच उठता है, अभी भी महाप्रभु जी इस स्थान से गए थे उनमें ऐसे भक्ति की भावना अभी भी ये देखती, कौन सा भाग भाग, जैसे चक्रतीर्थ है, काशी नगर है, इसी सब रास्ते से होकर के सब गए थे, ये गंगा के किनारे किनारे वो जहाँ पर कि चीला भोजन हुआ था हाथी इत्यादि सब अभी भक्ति के सब शोध करते हैं, ये सब है महाप्रभु जी की भगवान के विशेष करुणा, उन्होंने लक्ष्य किया जे ऐसे ही ये दयालु हैं, हमारे अंदर में भी कभी इतना प्रेम नहीं आया जो आ जाए, और इन ब्राह्मणों को जो स्मार्ट थे उनके अंदर में भी ऐसा आ गया, इसलिए तो मालूम पड़ता है ये तो आकृति और प्रकृति से ये भगवान है। तुमने हमसे कोई भेदभाव और घृणा नहीं की, मोरे स्पर्श ना करिए घृणा भय वेद भय, मोर दर्शन तुम्हार वेद नहीं से, हमारा दर्शन और स्पर्श तो वेदों में नहीं सिद्ध किया गया, किंतु आपने उसकी बात न मान करके हमको स्पर्श कर दिया, ये सबरी का सबरी थी पुलिंद कन्या भिल्ली, भिल्ली का स्पर्श इत्यादि नहीं करना और उसमें भी वो थी। इसलिए ऋषियों का समुदाय जहाँ रहता था और उसके गुरु थे मातंग ऋषि। इसकी इच्छा हुई कि मैं जाऊं, थोड़ा सा सुनिए ये लोग क्या सत्संग करते हैं। तो वो बहुत दूर से जाकर के दंडवत प्रणाम ऐसे करके साष्टांग मिट्टी में उसी दिशा में बहुत दूर से और वहीं पर सोई रह गई जब तक करी हरि कथा होती। इसके बाद में हरि कथा समाप्त हो गई। ऐसे वो करती थी और जो प्रतिदिन जिस रास्ते से साधु संत लोग जाते थे वहां ऋषि उसको झाड़ती थी, यहाँ तक कि अपने केशों से झाड़ती थी जितने को कष्ट न हो। और गुरु जी के लिए गुरु जी मन ही मन मान लिया था, उनसे संबंध नहीं था, उनकी बात तो दूर से सुनी थी किंतु अपना गुरु बना लिया मन ही मन में। और लकड़ी हवन के लिए उनके आश्रम के लिए कहाँ कहाँ से सूखी लकड़ी चुनकर गठरी बांध करके और रात में ले करके पास में फेंकते जैसे यहाँ से उठा लो यज्ञ के लिए। बस सुंदर सुंदर इन लोगों ने ऋषियों ने कहा कि एक वहां पर आती है भिल्ली, आप उसको मना कर दीजिए आश्रम में मत प्रवेश करें। वो आश्रम में आ जाती है, वहां आती नहीं थी दूर, आप उसको मना कर दीजिए ना, आप नहीं कहेंगे हम लोग मना कर देते हैं।